सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहुं मुनिसुवय देसयरं प्रणमीय मुनिसुवयं जिनं देवं संकममणुगमिणं जहासु अम्वन्नै सामो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धौला टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य, जिन्होंने श्री धर्मसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। ये 16वीं पुस्तक जो शेष अनुयोग द्वार है, उसमें से संक्रमण अनुयोग द्वार, संकम अनुयोग द्वार की बात अपनी चल रही है और हम पृष्ठ संख्या 354 पर आ गए। 354 देखो, हमने 350 पृष्ठ से जघन्य स्थिति संक्रम का जो प्रमाण है उसको देखा था, और उसको देखते देखते उसका स्वामित्व भी देख लिया था। तो प्रमाण में से जहां ये शुरू हुआ ना, 352 पृष्ठ पर, हाँ, जगन्य स्वामित्व का कथन तो हमने पढ़ लिया पूरा ही। तो ये जो लिखा है चार लाइन, यहाँ स्वामित्व का कथन करते हैं, वो चार लाइन हमने नहीं पढ़ी थी। वही इस प्रकार है, जिस प्रकार वो चार नहीं पढ़ी थी, हाँ, आगे पीछे के रेफरेंस देखे थे। तो जिस प्रकार उत्कृष्ट स्थिति की उदीर्णा में सभी कर्मों के स्वामित्व की प्ररूपणा की गई है, उसी प्रकार से उत्कृष्ट स्थिति के संक्रम में भी सभी कर्मों के स्वामित्व की प्ररूपणा करना चाहिए। इस प्रकार उत्कृष्ट स्थिति संक्रम का स्वामित्व समाप्त हुआ। हमने उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा में बहुत विस्तार से उसकी बात देखी थी, उसके पश्चात जघन्य स्थिति संक्रम का भी प्रमाण और स्वामित्व हमने एक साथ देख लिया है। अभी हम 354 पृष्ठ पर आ गए, अभी यहाँ काल की प्ररूपणा देखेंगे, क्योंकि उदीर्णा में भी अपकर्षण के द्वारा जो उदीर्णा होती थी उसकी बात हमने देखी थी। उदीर्णा होने भी वो भी संक्रमण का एक प्रकार हो गया, स्थिति संक्रमण का, क्योंकि स्थिति बदल जाती है, एक निषेक में से परमाणु अन्य निषेक में चले जाते हैं तो उसके स्थिति संक्रमण कहलाता है। उसकी बात तो हमने देख ली, यानी ये जो स्थिति संक्रमण होता है वो कैसे कैसे होता है याद है? अपकर्षण द्वारा, उत्कर्षण द्वारा और संक्रमण, अन्य प्रकृति रूप संक्रमण द्वारा, तीनों ही उसमें आते हैं। अब ये जो संक्रमण का जो काल है एक जीव की अपेक्षा, उसकी बात करते हैं। एक जीव की अपेक्षा काल की प्ररूपणा की जाती है, 5 ज्ञानावरणीय, 9 दर्शनावरणीय, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, 16 कषाय, नपुसक वेद, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा के उत्कृष्ट स्थिति संक्रम का काल कितना है? उत्कृष्ट स्थिति संक्रम कब होती है? जब उत्कृष्ट उदीर्णा होती है, स्थिति उदीर्णा की बात है। तो स्थिति उदीर्णा कब होती है? उत्कृष्ट स्थिति माइनस दो आवली, एक बंधावली और उदयावली को छोड़कर, उसको उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा में लिया था, तो उसका काल कितना है? जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से अंतर्मूर्त मात्र है। 5 ज्ञानावरण, 9 दर्शनावरण, मिथ्यात्व, 16 कषाय और असाता वेदनीय के अनुत्कृष्ट स्थिति संक्रम का काल उत्कृष्ट तो एक समय जघन्य घटित हुआ और लगातार हो तो अंतर्मूर्त भी घटित हुआ था। अब अनुत्कृष्ट यानी जो उत्कृष्ट नहीं है उसके नीचे वाली स्थिति जो है, तो जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से असंख्यात पुद्गल परिवर्तन मात्र हैं। अथवा मति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञानावरण के अनुत्कृष्ट स्थिति संक्रम का काल एक समय को आदि करके असंख्यात पुद्गल परिवर्तन मात्र तक है। इसका कारण यह है कि मति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञानावरण की संख्यात प्रकृतियों में अन्य प्रकृति की उत्कृष्ट स्थिति बांधकर द्वितीय समय में सब प्रकृतियों की अनुत्कृष्ट स्थिति को बांधकर तृतीय समय में अन्य प्रकृति की उत्कृष्ट स्थिति को बांधकर आवली बीत जाने पर, नहीं मुझे ये देखना था आवली कालातीत लिखा है कि आवली का तीत लिखा है ऊपर, अथवा एक समय का दून जाओ संगे बोल पर्यट में कुदो सुभाषिंग कसटी दम बंदी तदीय समय और पड़े कस बंदी आवली या दीदम आवली का तीतम उसका संक्रमण करने वाले के अनुत्कृष्ट स्थिति का एक आदि समय रूप काल पाया जाता है। क्या कहना चाहते हैं, यानी मति ज्ञानावरण की और श्रुत ज्ञानावरण की भी बहुत सारी प्रकृतियां हैं, खाली वो एक ही प्रकृति नहीं है। हमने देखा ना मति ज्ञानावरण, जितने वो मति ज्ञान के भेद होंगे उतने वो उसके आवरण के भी भेद होंगे। तो उसमें से कुछ प्रकृतियां ऐसी है कि किसी का उत्कृष्ट स्थिति बांधा, दूसरे समय में उनकी अनुत्कृष्ट स्थिति बांधी, फिर तीसरे समय में उत्कृष्ट स्थिति बांधी, और आवली काल बीत जाने पर उसका संक्रमण करते हैं। तो बीच में एक समय के लिए अनुत्कृष्ट स्थिति बांधी थी तो अनुत्कृष्ट रूप से स्थिति उदीर्ण होगी तो उसको अनुत्कृष्ट स्थिति संक्रम कहेंगे। 355 पर आ गए हम, दूसरा पैराग्राफ। अरति शोक भय जुगुप्सा और नपुसक वेद की अनुत्कृष्ट स्थिति के संक्रम का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से असंख्यात पुद्गल परिवर्तन रूप अनंत काल मात्र है। ये एकेंद्रियों में उदय रूप जो है वहाँ भी उसकी उदीर्णा भी होगी, उस अपेक्षा से इसको लिया है, क्योंकि एकेंद्रियों में जो काल बिताता है असंख्यात पुद्गल परिवर्तन उसकी अपेक्षा से लिया है। स्त्री वेद पुरुष वेद वो बराबर दिख रहा है प्रिंटिंग, असाता वेदनीय हास्य और रति की उत्कृष्ट स्थिति के संक्रम का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से आवली मात्र है। ये असाता पहले भी लिया था, यह साता लेना है क्या? और ऊपर इति पुरुष वेद साध साध लिखा है, साता चाहिए क्योंकि हास्य रति के साथ साता लेना है ना। देखो 354 पृष्ठ पर आसाता की बात उन्होंने ज्ञानावरण के साथ ली थी। हाँ यहाँ भूल से आ गया है क्योंकि ऊपर तो इत्थी पुरी सवेद साध हस्सर अधीनम कहा है। फिर पढ़ते हैं स्त्री वेद पुरुष वेद साता वेदनीय हास्य और रति की उत्कृष्ट स्थिति के संक्रम का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से आवली मात्र है। इनके अनुत्कृष्ट स्थिति के संक्रम का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से असंख्यात पुद्गल परिवर्तन मात्र अनंत काल है। विशेष इतना है कि साता वेदनी का उक्त काल जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से असंख्यात पुद्गल परिवर्तन मात्र है। वहाँ असाता का बंद होता है और साता है वो टर्न होते रहेंगे ना, संक्रम की बात चल रही है यहाँ पर। देवायु और नारकायु की उत्कृष्ट स्थिति के संक्रम काल निषेक स्थिति स्वरूप है, जो नियम से अंतर्मूर्त मात्र है। उत्कृष्ट स्थिति का संक्रम काल, देखो उसका स्वामी निकालना। नहीं, स्वामी तो उन्होंने बताया जैसे अपने उदीर्णा का स्वामी है वैसा ही है। जघन्य किसके होता है, वो जघन्य की बात है। वहां उत्कृष्ट तो अपने अपने उदीर्णा वाला ही लिया था उन। हाँ, 33 वाला है। उत्कृष्ट स्थिति के संक्रम काल निषेक स्थिति स्वरूप है। उत्कृष्ट रूप से कब तक रहेगा अंतर्मूर्त का, बाद में वो तो अनुत्कृष्ट रूप से हो जाएगा। इस समय पहले एक अंतर्मूर्त तक तो नहीं, ऐसा लेना जब बंद काल है ना, बंधने के समय अंतर्मूर्त तक उत्कृष्ट स्थिति में से जो कुछ वहां अपकर्षण होता रहता है, उदय की बात नहीं है वहां पर, उसको लेना। यहाँ पर वहां क्या है, बंधने के समय से लेकर आवली काल के बाद उसका उत्कर्षण अपकर्षण सब चलता है, उसकी अपेक्षा से यहाँ लेना चाहिए। देवायु और नारकायु की देवायु और नारकायु की अनुत्कृष्ट स्थिति के संक्रम का काल जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से साधिक 33 सागरोपम प्रमाण है। ये साधिक क्यों लिया, क्योंकि पहले आबादावाल आयु बंधने के समय से लेकर उसको ले लेना है। यानी बंधने के बाद, बंधने के समय से आवली काल बीत जाता है, बंधावली, और वो बंधक काल में भी उसका उत्कर्षण आदि होता है, और बाद में भी आबाधा काल में भी उसका अपकर्षण आदि बातें होती रहती है। मनुष्यायु तिर्यायु की उत्कृष्ट स्थिति के कहा देव निरयाम उत्कृष्टि संकमो निषय ठिदिगो नियम अंतमोत्तो, बराबर कहा प्राकृत अनुकृष्टि संकमो देव निरयाम जहन्यन अंतमोत्तम उत्कसम 33 सागरोपमानि। हिंदी में अंतिम, हिंदी की लास्ट लाइन है ना, जघन्य से अंतर्मूर्त, उसी पेज पर है उसका। हाँ, लिखा है, लिखा है ना, अनुत्कृष्ट स्थिति के संक्रम का काल जघन्य से अंतर्मूर्ति लिखा है ना, और उत्कृष्ट से 33 आग्रोपम है। मनुष्यायु और तिर्यगायु की उत्कृष्ट स्थिति के संक्रम का काल निषेक स्थिति स्वरूप है, जो जघन्य व उत्कर्ष से अंतर्मूर्त मात्र है। उनकी अनुत्कृष्ट स्थिति के संक्रम का काल जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से साधिक 3 पल्योपम प्रमाण है। यहाँ भी ऐसे ही लेना। हाँ, आबादा काल में भी उसका जो कुछ उत्कर्षण अपकर्षण आदि होता है, यानी उत्कर्षण कब होगा, जो बंध का अंतर्मूर्त है उस दरम्यान उसका उत्कर्षण होगा, और अपकर्षण तो आबादा काल में चलता रहेगा। कुछ निषेक ऊपर से नीचे आते रहते, वहां तो उदय का कोई सवाल नहीं है, फिर भी निषेकों की जो रचना है उसमें उनकी स्थिति कम अधिक होती है, कम होती है, अधिक नहीं। उत्कृष्ट स्थिति को बांधने वाला जीव जिन नाम प्रकृतियों को बांधता है, उनकी उत्कृष्ट स्थिति के संक्रम का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से अंतर्मूर्त मात्र है, ये लगातार काल की बात चल रही है। उसकी अनुत्कृष्ट स्थिति के संक्रम का काल जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से अनुद्वेल्यमान प्रकृतियों का, जो उद्वेलना नहीं होती है ऐसे प्रकृतियों का असंख्यात पुद्गल परिवर्तन तथा उद्वेल्यमान प्रकृतियों का साधिक 2000 सागरोपम है। यानी जब तक उद्वेलना नहीं होती है तब तक उसके उस उत्कृष्ट स्थिति का संक्रमण होगा। जिन नाम प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति का संक्रम तीन आवलियों से हीन 20 कोड़ाकोड़ी सागरोपम प्रमाण है, उन प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति के संक्रम का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से एक आवली मात्र है। यानी ये इसीलिए कि संक्रमित होकर आने वाली प्रकृतियां हैं, संक्रमणावली भी लिए ना उसमें, और बाकी ऊपर जो थी तो स्थिति संक्रम लेना है खाली उसमें, यानी उसमें उदीर्ण होकर आने वाले परमाणु लिए थे। हाँ, और संक्रमणावली ऐसे तीन आवली, उनकी अनुत्कृष्ट स्थिति के संक्रम का काल जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से अनुद्वेल्यमान प्रकृतियों का असंख्यात पुद्गल परिवर्तन तथा उद्वेल्यमान प्रकृतियों का साधिक 2000 सागरोपम है। ये काल के बारे में कुछ है कि थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। प्रस्तावना में कल हमने पढ़ा था, सात पेज पर आए थे हम, ये प्रमाणानुगम की बात है। ये प्रमाण तो अपना हो चुका है, प्रमाण की बात है वो सात पेज पर, प्रमाणानुगम जो हमने कल देखा था पढ़ा था। हाँ, उसमें इतना ही लेके वहाँ संक्षेप में निरूपण किया है, उसके काल के बारे में और कुछ नहीं लिखा है। प्रमाण के बारे में जो हमने कल पढ़ा था विस्तार से, उसका कारण भी हमने देख लिया था, उसी की बात है यहाँ पर। यानी वो जघन्य स्थिति संक्रम में ऐसा लेना जहाँ जिसकी क्षपणा होती है वहाँ उसकी रिमेनिंग स्थिति कितनी है, जैसे ज्ञानावरण में उदीर्णा कब होती है, आवली और एक समय बाकी है, कितने स्थितियों में से उदीर्णा होती है, तो एक निशेक में से, तो जघन्य स्थिति संक्रमण में एक स्थिति लिया था। अब हास्यादि जो होते हैं तो आठवें के अंत में उसका उदय रुक जाता है, और जहाँ उसकी क्षपणा होती है वहाँ पर वो कितना उसका स्थिति बाकी है उसको लेते हैं, ये हमने कल प्रमाण में देखा था पूरा। काल के बारे में वहाँ कुछ नहीं लिखा है तो हम यहाँ ही आगे बढ़ेंगे 356 पर, नीचे का पैराग्राफ, आहार शरीर तथा उसके अंगोपांग बंधन और संघात की उत्कृष्ट स्थिति के संक्रम का काल जघन्य व उत्कृष्ट से एक समय मात्र है। वो लगातार बंद नहीं है क्योंकि उसका उदय जब है तब बंद नहीं है। तो उसकी उदीर्णा कब होगी, उसके उदय काल में होगी। हाँ, तो वो मैक्सिमम स्थिति में से आया, फिर एक स्थिति गल गई उसकी, तो उत्कृष्ट स्थिति का काल एक समय ही होगा। उसकी अनुत्कृष्ट स्थिति के संक्रम का काल जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से पल्योपम के असंख्यातवे भाग मात्र है। ये पल्योपम के असंख्यातवे भाग जो है वो उद्वेलना वाली प्रकृति है, तो उसके अपेक्षा से संक्रमण में लिया, नहीं तो उदीर्णा में तो हम केवल उसको अंतर्मूर्त तक लेते थे, उसकी उद्वेलना होती है ना, अन्य प्रकृति रूप हो जाते हैं, उसको लिया। तीर्थंकर नाम कर्म की उत्कृष्ट स्थिति के संक्रम का काल जघन्य व उत्कर्ष से एक समय मात्र है। उसकी अनुत्कृष्ट स्थिति के संक्रम का काल जघन्य से संख्यात हजार वर्ष और उत्कर्ष से साधिक 33 सागरोपम मात्र है। इसका अर्थ उसका संक्रमण होता है अन्य प्रकृति रूप, हाँ, बंधने के समय से लेकर, हाँ, ये क्या कहते हैं, सम्य दर्शन होने के बाद कोई भी कर्म की स्थिति बनती है तो अंत कोड़ा कोड़ी सागर इतनी बनती है। तो अंत कोड़ा कोड़ी सागर की आबादा अंतर्मूर्त है, तो अंतर्मूर्त में उसका जो अपकर्षण आदि बातें चालू हो जाती है आबादा के बाद, तो उसका जो अपकर्षण तो होगा ही, अन्य प्रकृति रूप उसका संक्रमण होकर उदय में आना भी चालू रहेगा। इसलिए इसको लिया, अनुत्कृष्ट में लिया। उत्कृष्ट तो ठीक समझे कि एक समय ही हो सकता है, जितना उत्कृष्ट बांधा है उसको, उसके बाद उसको अनुत्कृष्ट कहेंगे। और वो कितने काल तक चलेगा अनुत्कृष्ट, तो जघन्य से संख्यात हजार वर्ष और उत्कृष्ट से साधिक 33 सागरोपम। उच्च गोत्र की उत्कृष्ट स्थिति के संक्रम का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से आवली मात्र है। नीच गोत्र की उत्कृष्ट स्थिति के संक्रम का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से अंतर्मूर्त मात्र है। ये उत्कृष्ट की बात है। और उच्च गोत्र और नीच गोत्र की अनुत्कृष्ट स्थिति के संक्रम का काल जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से असंख्यात पुद्गल परिवर्तन मात्र है। इस प्रकार उत्कृष्ट काल समाप्त हुआ। दोनों को उसके लिए उत्कृष्ट स्थिति के लिए अंतर्मूर्त लिया। जघन्य स्थिति के संक्रम काल की प्ररूपणा करते हैं। हमने अभी तक उत्कृष्ट स्थिति के संक्रम देखा था, अब जघन्य स्थिति के संक्रमण काल की। हाँ, एक जीव की अपेक्षा ही चल रहे हैं। देखो, पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, साता वेदनीय, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, 16 कषाय, नौ कषाय और पांच अंतराय, इनकी जघन्य स्थिति के संक्रम का काल अनादि अपर्यवसित और अनादि सपर्यवसित भी है। विशेष इतना है कि 16 कषाय और 9 कषायों की अजघन्य स्थिति संबंधी संक्रमण काल के तीन भंग हैं। एक लिए उसका जघन्य स्थिति का स्वामित्व जो हमने देखा था, इसमें लेना था ना, 352 में लिया था नीचे में, चरम समयवर्ती छद्मस्थ होने में एक समय और आवली बाकी है। ऊपर क्या लिखते, जघन्य तम जहां, वो तो एक जीव की अपेक्षा एक समय ही होगा। जन नुक्क से ना एक समय, अजगण्य के लिए वो होना, अजगण्य तिथि संक्रम कालो अनादियो अपज्यवसितो, ये एक वाक्य रह गया है यहाँ पर। देखो फिर पढ़ती हूँ, पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सातावेदनी, असातावेदनी, मिथ्यात्व, 16 कषाय, नौ कषाय और पांच अंतराय, इनके जघन्य स्थिति संक्रम काल जघन्य और उत्कृष्ट से एक समय है, ऐसा लिखना चाहिए। पूरा एक वाक्य गया है क्या? नहीं तो ऐसा लिखा ना, इनकी जघन्य स्थिति के संक्रम का काल, ये आगे लिखा है ना, नहीं वो तो उसके लिए दूसरा वाक्य बनाना, इनके जघन्य स्थिति के संक्रम का काल अभी इसके ऊपर जघन्य और उत्कृष्ट से एक समय है। जघन्य और उत्कृष्ट से एक समय मात्र है। यहां फुल स्टॉप देना। अब ऊपर जैसे लिखा है अजघन्य थिति संक्रम कालो अनादि व अपज्यवसितो, और उनके अजघन्य स्थिति संक्रम का काल ये पूरा एक वाक्य रह गया था, ने एक लाइन वहां से रह गई थी। लिखा भाई, फिर पढ़ती अभी लिखने के साथ दोबारा 357 पृष्ठ पर जघन्य स्थिति के संक्रम काल की प्ररूपणा करते हैं। यथा पांच ज्ञानावरणीय, नौ दर्शनावरणीय, साता वेदनीय, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, 16 कषाय, 9 नौ कषाय और 5 अंतराय, इनकी जघन्य स्थिति के संक्रम का काल जघन्य और उत्कृष्ट से एक समय मात्र है। उनके अजघन्य स्थिति संक्रम का काल अनादि अपर्यवसित और अनादि सपर्यवसित भी है। हाँ, वो तो अजघन्य के लिए है। विशेष इतना है कि 16 कषाय और 9 नौ कषायों की अजघन्य स्थिति संबंधी संक्रम काल के 3 भंग हैं। ऊपर तो 2 ही लिए, अनादि अनंत और अनादि शांत। अब इनको कौन सा लिया? हाँ, 3 भंग है। उनमें जो सादी सा पर्यवसित है वह जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से उपार्ध पुद्गल परिवर्तन मात्रा, ये कौन होगा? उपशम श्रेणी वाला। या अलग अलग कषायों के अलग अलग जगह भी ले सकते हम, मगर जघन्य स्थिति जो है ना, जघन्य के लिए उसकी विशिष्ट काल है। अजघन्य तो हमेशा होते रहेगा। सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की जघन्य स्थिति के संक्रम का काल जघन्य व उत्कर्ष से एक समय मात्र है। ये कहां पर लेना है? सम्यक्त्व की जघन्य स्थिति, हाँ, क्षपणा वाला निकालो, देखो उसका स्वामित्व निकालो। 352 पृष्ठ पर, 53 पर होना चाहिए। सम्यक्त्व का कब होता है? तो अंतिम समयवर्ती ये अंतिम कांडक वाला है ना। सम्यक्त्व की बात कहाँ लिखी? वो तो एक आवली और एक समय बाकी है, तभी होगा ना उसका। और मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का कब होगा? तो उसका अपना अपना अंतिम स्थिति कांडक की अंतिम फाली है, वो जब अन्य रूप टर्न हो जाती है तब उसको लेना है। हाँ, 354 पर लिखा है क्या? सम्यक तो प्रकृति का किसका होता है? हाँ लिखा है, देखो हमें वही बात बताई ना अभी, अंतिम समयवर्ती अक्षीण दर्शन मोहने में एक समय अधिक आवली मात्र शेष है। ये स्वामित्व देखा हमने किसको होता है। सम्यक मिथ्यात्व की समझ में आया? जब सपना करता है तो पहले में मिथ्यात्व के परमाणु अन्य दो रूप होते हैं, फिर सम्यक मिथ्यात्व के जो परमाणु है वो कांडक के रूप में उसका संक्रमण होता रहता है। तो अंतिम कांडक की अंतिम फाले, अभी पूरा का पूरा संक्रमण हो जाएगा सम्यक प्रकृति में, तब उसके वहाँ जघन्य स्थिति संक्रम कहलाएगा। वहाँ जितने उसके निषेक है वो कांडक प्रमाण, उतने स्थितियों का संक्रमण होगा। उसमें एक तो नहीं बनेगी स्थिति, तो वहाँ उसका जघन्य स्थिति संक्रम कहलाएगा। अब कहते अजघन्य स्थिति के संक्रम का काल दोनों का ही जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से साधिक 266 सागरोपम मात्र है। ये अजघन्य की बात है। जो कि चौथे में गया है, और सम्यक्त वेदक सम्यक्त्व का अधिक से अधिक काल कितना है? 66 सागर, 266 सागर। तो उतने काल में सम्यक मिथ्यात्व वो संक्रमित होकर सम्यक प्रकृति रूप से उदय में आ रहा है ना, उसको लेना। और यहाँ स्थिति संक्रम लेना, सम्यक्त्व में भी उसके तो निषेक ऊपर से नीचे आते रहेंगे, उसको भी लेना उसमें। प्रकृति संक्रम में नहीं लिया था, देखो देखो ये जरा बात फिर ख्याल में लेना। यहाँ स्थिति संक्रम में सम्यक्त्व का स्थिति संक्रम 266 सागर तक लिया था, प्रकृति संक्रम में यानी सम्यक प्रकृति अन्य रूप हो जावे तो वहां तो लिखा था सम्यक दृष्टि के उसका संक्रम नहीं है, प्रकृति संक्रमण नहीं है। प्रकृति संक्रमण यानी जब तक उसका वेदक सम्यक तो चल रहा है तो सम्यक प्रकृति अन्य प्रकृति रूप नहीं हो रही है। वो कहाँ होगा? वो मिथ्यात्व में जाके होगा। इसलिए आपको वो प्रकृति, हाँ यही प्रश्न है, मगर प्रश्न ही नहीं बराबर पूछा आपने। हाँ यानी सम्यक तो के काल में सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का प्रकृति संक्रमण नहीं होगा, स्थिति संक्रमण होगा। का अर्थ क्या है? उसका अपकर्षण आदि वो चलेगा, उदीर्णा वगैरह उसमें भी होगी ना उदय। इसलिए स्थिति संक्रम में लिया उसको। चार नीचे, चार आयु कर्मों की जघन्य स्थिति के संक्रम का काल जघन्य उत्कर्ष से एक समय मात्र होता है। ये कब होता है? स्थिति संक्रम की बात चल रही है। हाँ, अवली प्लस एक समय बाकी है मरण के लिए, तब उसके अंत में ये लास्ट पॉइंट है जब उदीर्णा होती है, वो एक समय वाले निषेक की उदीर्णा उदयावली में चला जाएगा, बाद में उदीर्णा रुक जाएगी। तो वो जघन्य स्थिति उदीर्णा है, एक ही स्थिति में से वहां उदीर्णा होती है, उसी को यहाँ संक्रम कहा है। तो उसके एक ही समय घटित होगा, दो चार ज्यादा समय नहीं घटित होगे। अजघन्य स्थिति के संक्रम का काल देवायु और नारकायु का जघन्य से साधिक 10,000 वर्ष और उत्कर्ष से साधिक 33 सागरोपम प्रमाण मात्र है। ये साधिक इसलिए लिया कि पूर्व का आयु बांधने के बाद वो जो आबाधा बाकी है उसकी, उसको भी उसमें ले लिया है। मनुष्यायु और तिर्यंचायु की अजघन्य स्थिति के, जघन्य तो सबके लिए एक समय घटित हुआ था, अजघन्य स्थिति के संक्रम का काल जघन्य से एक समय और अंतर्मूर्त मात्र है। यही यही पूछा है पूरे आगे। मनुष्यायु और तिर्यंचायु, मनुष्यायु के लिए एक समय और तिर्यंचायु के लिए अंतर्मूर्त, ये एक समय अंतर्मूर्त मिलाना नहीं है, ये दो लिए ना, तो मनुष्यायु में एक समय घटित होगा और तिर्यंचायु में अंतर्मूर्त घटित होगा। हाँ देखो, शंका, आपकी शंका पूछ रहे हैं, मनुष्यायु का एक समय मात्र उक्त काल कैसे बनता है, अजगण्य का एक समय कैसे घटित होगा? तो कहते कारण यह कि आयु में आवली के असंख्यात वे भाग से अधिक दो आवली काल के शेष रहने पर जिसके आयु का अपकर्षण व संक्रम नष्ट हो चुका है, यानी आयु का संक्रमण कहो या अपकर्षण कहो कहाँ तक होता है, उदीर्णा छठे तक ही होती है, सातवें में जाने पर नहीं होती है, बराबर है ना? यानी वो रुक गया, अभी आयु का संक्रमण रुक गया। ऐसे अप्रमत्त संयत के दो समय अधिक आवली मात्र शेष प्रमत्त गुणस्थान को प्राप्त होकर, अभी प्रमत्त गुणस्थान में प्राप्त हुआ तब मरण के लिए कितना काल बाकी था? आवली और दो समय, नहीं समझे? देखो देखो, पहले छठे में था फिर सातवें में गया, सातवें में जब छठे में आया तो अभी मरण के लिए काल कितना बाकी रहे? आवली और दो समय। आवली और एक समय में तो जघन्य हो जाएगा, और जब दो समय यानी दो स्थितियों में से उदीर्णा होगी तो उसको अजघन्य कहेंगे, तो अजघन्य एक समय घटित हो जाता है, बाकी सब अजघन्य है उसको अजघन्य के लिए उत्कृष्ट काल कहेंगे, अजघन्य के लिए जघन्य काल हमको लेना है, जघन्य से ना, अजघन्य के लिए मिनिमम काल कितना है? तो एक समय है। फिर पढ़ते, कारण कि आयु में आवली के असंख्यात वे भाग से अधिक दो आवली काल के शेष रहने पर जिसके आयु का अपकर्षण व संक्रम नष्ट हो चुका है, ऐसे अप्रमत्त संयत के दो समय अधिक आवली मात्र शेष प्रमत्त गुणस्थान को प्राप्त होकर, एक समय अजघन्य संक्रम के करने पर द्वितीय समय में जघन्य संक्रम पाया जाता है। ये बात ख्याल में आई? इन्हें वो सातवें का काल कितना छोटा घटित किया, नहीं समझ में आए? छठे में से सातवें में गया तब कितना था? दो आवली प्लस असंख्यात समय, आवली का असंख्यात भाग था, दो आवली प्लस आवली का असंख्यात भाग, उतने में सातवां करके फिर छठे में आ गए। नहीं, मैं यहाँ देखो ना, आयु में आवली के असंख्यात भाग से अधिक दो आवली काल के शेष रहने पर आयु का अपकर्षण रुक गया, यानी वो छठे में से सातवें में गया, ऐसे लेना है ना? वो बड़ा काल हो सकता है, पर जघन्य काल इतना घटित होगा कि नहीं होगा? देखो यहाँ क्या ले, उसका संक्रम क्यों नष्ट होगा? क्योंकि छठे से सातवें में गया और वापस में छठे में आया तब कितना काल बाकी था? हाँ, दो समय प्लस आओगे। और ये लिखने की भी जरूरत नहीं ना, डायरेक्ट अगर लिखते, प्रमत्त में आने पर इतनी आयु शेष थी तो भी ये बात घटित हो जाता जाती। ऐसी बात नहीं, आउए आवलिया असंख्य जी भाग्य ने अह्य दो आवलिया वसे से आउवस विनठ उक्कड़न संकमे अपमत्ते दु समया ही आवलिया, एक मात्रा ज्यादा हो गई, आवलिया अवशेष पमत्त गुणम परिवन्ने कय एक समय अजहन्न संक्रमे विधिय समय जहन्न संक्रम उलम्भा दो, यानी वहां उदीर्ण रुकती और संक्रमण होता है, ऐसा कुछ है? ये कैसे होगा? मैंने ये लिखने की क्या जरूरत थी? उसकी यहाँ कहाँ प्रश्न आता है? उसकी जरूरत नहीं थी ऐसा कहना मेरा। ऐसे अप्रमत्त संयत के दो समय अधिक आवली मात्र शेष प्रमत गुण स्थान को प्राप्त होकर, यानी कोई भी अप्रमत है प्रमत में आता है, और आयु कितनी है तो आवली प्लस दो समय, तो एक समय अजगण्य और दूसरे समय में जगण्य हो जाएगा। ठीक है, उनकी अजगण्य स्थिति के संक्रम का काल उत्कर्ष से साधिक तीन पल्योपम मात्र है, यह हमने पहले भी देखा था। नरक गति, नरक गति प्रायज्ञानुपूर्वी, तिर्यक गति, तिर्यक गति प्रायज्ञानुपूर्वी, एकेंद्रिय द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरेंद्रिय जाति, आतप उद्योत, स्थावर सूक्ष्म और साधारण शरीर नाम कर्मों की, स्थावर सूक्ष्म और साधारण लिया, अपर्याप्त नहीं लिया, अच्छा, जघन्य स्थिति के संक्रम का काल जघन्य व उत्कर्ष से एक समय मात्र है। ये कहां पर होगा? ये क्षय करने वाला, ये तेरा प्रकृति है ना, कहां क्षय होती है? दसवें में केवल सूक्ष्म लोभ का क्षय होता है और किसी का नहीं होता है। बारहवें में केवल ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का होता है, अन्य किसी का नहीं होता है। अभी नीचे उतर के आओ। नौवें में होता है, आठवें में किसी कर्म का क्षय नहीं होता। सत्ता की स्थिति बराबर, देखो देखो, कल हमने पढ़ा था अनिवृत्तिकरण क्षपक, हमने कल देखा था। देखो, हमने जो स्वामित्व में देखा था ना, जघन्य स्थिति संक्रम का स्वामित्व कौन है? प्रमाण में भी देखा था, देखो प्रमाण में पहले निकालो, 351 पृष्ठ नीचे के दो लाइन, यही तेरा की लिस्ट दी है। नरगति नरगत्यानुपूर्वी, तिर्य गति तिर्य गत्यानुपूर्वी, ये दो गति और गत्यानुपूर्वी, फिर चार जाति, आतप उद्योत और स्थावर सूक्ष्म साधारण। जघन्य स्थिति संक्रम कितना होता है? तो पल्ले के असंख्यात भाग मात्र होता है। और वो कर्ता कौन है? तो देखो अनिवृत्तिकरण 354 पर, ये नीचे के पैराग्राफ में सेकंड लाइन, नरगति यही तेरा प्रकृति, इनका जघन्य स्थिति संक्रम किसके होता है? जघन्य स्थिति संक्रम में कितने स्थितियों का संक्रम होता है? तो कल कहा था पल्ले के असंख्यात विभाग, वो करने वाला जीव कौन है? तो अंतिम स्थिति कांडक की अंतिम फाली का निक्षेप करने वाले अनिवृत्तिकरण क्षपक के होता है, यानी जहां उसका क्षय होता है वहां जो अंतिम फाली वो हो जाती है टर्न, क्षय करने वाली, संक्रमित होकर क्षय होता है ना, एक क्षय जब जब कहा है ना, ये जो उदय रूप प्रकृतियां नहीं है, और उनका क्षय कैसे होता है? अन्य प्रकृति रूप संक्रमित हो जाती है, ये उसका जघन्य स्थिति संक्रम, यानी वहां उतनी की उतनी स्थितियां एक साथ अन्य रूप होकर नष्ट हो जाती है, तो उसका जघन्य स्थिति संक्रम कहा। हाँ, कहाँ मिला चार्ट, सत्ता का चार्ट मिला। हाँ पढ़ो पढ़ो, पहले आठ कषाय बताए ना, नहीं आठवें नहीं, नौवे में होता है। हाँ, टोटल 36 का क्षय होता है। अभी जो हमने पढ़े 13 उसके साथ, नहीं स्त्यान ग्रुद्धि आदि तीन वो भी है, यानी 16 एक साथ क्षय होता है, आठ कषायों का उसके पहले होता है ना, उसके दूसरे भाग में। हाँ हाँ, क्रोध मान माया, हाँ, यानी नौवे गुणस्थान में क्षय होने वाली प्रकृतियां बताई, ये 16 प्रकृतियां, नाम कर्म की 13, दर्शनावरण की 3, वो स्त्यान गृद्धि 3, ये 16 हो गई, 8 कषाय, फिर एक एक क्रम से 3 वेद, कितनी हुई? 16, 8, 24 और 3, 27। हाँ, निद्रा लिए ना, निद्रा और कुछ रह गया? हाँ, 36 गिनाई ना आपने, तीसरा वेद. अच्छा अच्छा वो छे रहेगी. हाँ बराबर. हाँ से रहती मैंने बोला नहीं. इस तरह से यहाँ 36 हो जाती है. अब यहाँ हम अपने विषय पर आते. फिर यहाँ क्या जघन्य स्थिति संक्रम का काल कितना होगा? ये अंतिम कांडक की अंतिम फाली एक समय में संक्रमित हो गई तो उसका जघन्य काल एक समय घटित होगा. जघन्य स्थिति संक्रम का काल जघन्य कहो या उत्कृष्ट कहो एक ही समय घटित होगा, ज्यादा नहीं होगा. 358 पर आ गए हम नीचे से दूसरे पैराग्राफ में. ये अजघन्य की बात करेंगे. अभी अजघन्य स्थिति के संक्रम का काल अनुद्वेल्यमान प्रकृतियों का अनादि अपर्यवसित और अनादि सपर्यवसित भी है. अब इसमें से अनुद्वेल्यमान कौन कौन से है या उद्वेल्यमान कौन सी है वो बताओ. अभी हमने 13 प्रकृति देखी ना, उसमें उद्वेलना होने योग्य कौन कौन सी है प्रकृतियां? आसान है, हमने कल हाँ नरक गति और नरक गत्यानुकूली. ये नहीं नहीं वो इसमें नहीं है. इसमें से इस लिस्ट में से कितनी है? दो ही है. हाँ तो उनके अलावा अन्य जो है उसको अनुद्वेल्यमान कहेंगे. तो उनका अनादि अनंत और अनादि शांत भी है. उद्वेल्यमान प्रकृतियों की अजघन्य स्थिति के संक्रम का काल. संक्रम होता है ना, वहां उद्वेलना होती है ना, उसको भी संक्रम कहेंगे हम. जघन्य से साधिक 8 वर्ष और उत्कर्ष से साधिक 2000 सागरोपम मात्र है. उपर्युक्त प्रकृतियों के अतिरिक्त दो हजार सागरोपम त्रस स्थिति लिया. यानी अन्य गति में वो टर्न होके उदय में आएगी, ऐसा ही लेना उसको. अकेले उद्वेलना ही नहीं लेनी. साधिक 8 वर्ष. यानी वो क्षय कर देता है उस अपेक्षा से. अजघन्य स्थिति चल रही थी तो वो नरक गति है, वो मनुष्य गति रूप से उदय में आती रहेगी. जब उसका क्षय हो जाएगा तब अभी कोई संक्रम का संभव नहीं है. इसलिए साधिक. हाँ वही वो बताते हैं. केवल ज्ञान यानी वो क्षपक श्रेणी मांडेगा 8 वर्ष के बाद. ऐसा जो मनुष्य है 8 वर्ष तक वो नरक गति का जघन्य घटित करना है ना. उद्वेल्यमान प्रकृतियों की अजघन्य स्थिति के संक्रम का काल पहले उद्वेलना करके आया हुआ लेना, क्योंकि आगे के भव में होगा तो उसकी ज्यादा हो जाएगी. अपने को जघन्य काल जघन्य में करना है. देव में से नहीं, उद्वेलना करके आया हुआ लेना. नरक गति की उद्वेलना करके आया हुआ जीव लेना. इसलिए उत्कर्ष में तो साधिक 2000 लिया. उपर्युक्त प्रकृतियों के अतिरिक्त जो शेष नाम प्रकृतियां हैं उनकी जघन्य स्थिति के संक्रम का काल जघन्य व उत्कर्ष से एक समय मात्र है. उत्कृष्ट में से आया हुआ ऐसा. अब जो अन्य जो है नाम कर्म की उसके जघन्य व उत्कर्ष से एक समय है. उद्वेल क्योंकि इतनी प्रकृतियों का क्षय होता है ना नाम कर्म की, बाकी तो रहती है जहां उसका अंत में क्षय होगा, इसलिए वो एक समय घटित होगा. उद्वेल्यमान प्रकृतियों की अजघन्य स्थिति के संक्रम का काल जघन्य से साधिक 8 वर्ष मात्र है, ये फिर बताया उन्होंने। उत्कर्ष से वह मनुष्य गति और मनुष्य गति प्रायज्ञानु पूर्वी का असंख्यात पुद्गल परिवर्तन तथा देवगति और देव गति प्रायज्ञानु पूर्वी वैकिरेक शरीर, वैकिरेक अंगोपांग, वैकिरेक बंधन और वैकिरेक संघात का साधिक 2000 सागरूपम मात्र है। ये नरक गति और देवगति के लिए उतना दिया साधिक 2000 और मनुष्य गति के लिए असंख्यात पुद्गल परिवर्तन दिया, क्योंकि उस काल में मनुष्य गति बनती भी रहेगी और फिर वो संक्रमित भी होती रहेगी। आहारक शरीर, आहारक शरीर अंगोपांग, आहारक बंधन और आहारक संघात का उक्त काल जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से पल्यपम के असंख्यात वे भाग मात्र हैं, यानी उसकी उद्वेलना होती उस अपेक्षा से लेना है। तीर्थंकर नाम कर्म की जघन्य स्थिति के संक्रम का काल जघन्य व उत्कर्ष एक समय मात्र है। ये सर्वत्र घ बराबर आया क्या जघन्य में? कभी कभी ध जैसे दिखता है। जघन्य स्थिति का संक्रम कब कहलाएगा? जब उसकी उदीर्णा रुक जाएगी ना, बाद में तो उदय है उसका, संक्रम रुक जाएगा। 13वें के अंत में लेना, कहाँ लेना? वही तो, एक समय आवली नहीं लेना, वहां अंत समय लेना, वहां अंतर्मूर्त रह जाती है। फिर 14वें के अंतर्मूर्त के एक एक निशे खिरेगा और 13वें के अंतिम संक्रमण ही सयोगी के अंतिम समय में होगा। जो उदय रूप प्रकृतियां है 14वें वाले की, उसके उदीर्णा 13वें के अंतिम समय में होती है, वो आवली वाला उसमें नहीं लगता। देखो देखो यहाँ कितना होता है, वो 352 पृष्ठ पर आ गए हैं। ऊपर का जो पैराग्राफ है उसके लास्ट 2 लाइन, ये लंबी चौड़ी लिस्ट दी थी वहां, यशकेति, यशकेति निर्माण, तीर्थंकर भी आए ना उसमें, उच्च गोत्र, निज गोत्र, इनका जघन्य स्थिति का संक्रम अंतर्मूर्त मात्र है। यानी वो कब करता है? तो 13वें के अंत में, तब उसकी स्थिति कितनी बाकी है तो अंतर्मूर्त की, वैसे लेना उसको। उसकी अजघन्य स्थिति के संक्रम का काल जघन्य से संख्यात 1000 वर्ष और उत्कर्ष से साधिक 33 सागरोपम मात्र है, वो बंधने के समय से लेकर उसको ले लेना है। काल की बात है वहां पर, कितने स्थितियों में से होता है उसका प्रमाण नहीं है इसकी बात, ये तो काल की, कितने काल तक होगा उसकी बात है। शेष कर्मों की अजघन्य स्थिति के संक्रम का काल अनादि अपर्यवसित और अनादि सपर्यवसित भी है। उच्च और निज गोत्र की जघन्य स्थिति के संक्रम का काल जघन्य व उत्कर्ष से एक समय मात्र है। उनकी अजघन्य स्थिति के संक्रम का काल अनादि अपर्यवसित और अनादि सपर्यवसित भी है। विशेष इतना है, उच्च गोत्र की अजघन्य स्थिति के संक्रम का काल जघन्य से साधिक 8 वर्ष और उत्कर्ष से असंख्यात पुद्गल परिवर्तन मात्र है। इस प्रकार काल प्ररूपणा समाप्त हुई। अब अंतर बताएंगे। एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट स्थिति संबंधी संक्रम के अंतर काल की प्ररूपणा की जाती है। अकेले संक्रमण में अंतर नहीं बता रहे, उत्कृष्ट स्थिति के संक्रमण में अंतर कितना पड़ेगा, एक जीव की अपेक्षा। मति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञानावरण की उत्कृष्ट स्थिति के संक्रामक का अंतर काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से असंख्यात पुद्गल परिवर्तन मात्र है। क्योंकि उत्कृष्ट हमने देखा ना, 30 कोड़ाकोड़ी सागर बांधने वाला लेना है, और अभी हमने पढ़ा था उसमें से कुछ संख्यात प्रकृतियां ऐसी है, एक समय के लिए अनुत्कृष्ट बांधता है फिर उत्कृष्ट बांधता है, तो एक समय वाला भी वहां काल घटित होता है अंतर वाला। शेष तीन ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, साता वेदनीय असाता वेदनीय मिथ्यात् व 16 कषाय और नौ कषायों के उत्कृष्ट स्थिति के संक्रामक का अंतर काल जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से असंख्यात पुद्गल परिवर्तन मात्र है। देखो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन क्यों लिया, क्योंकि एकेंद्रियों में जाएगा तो यहाँ उत्कृष्ट इतनी स्थिति नहीं बांधेगा, तो हमने जो दो आवली से कम इतना लिया था वो घटित नहीं होगा वहां पर, इसलिए उसको अंतर में डाला। विशेष इतना है, नव नौकशायों की उत्कृष्ट स्थिति के संक्रामक का अंतर काल जघन्य से एक समय मात्र है। उत्कृष्ट स्थिति बांधी और उसका संक्रामक काल अंतर की बात चल रही है ना, अंतर काल, उत्कृष्ट स्थिति का अंतर काल संक्रामक का। उत्कृष्ट स्थिति का स्वामी कौन है, उसको ने अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति जहां बांधता है उसको ही लिया था ना स्वामी में। यानी फिर दोबारा उत्कृष्ट बांधेगा एक समय के लिए अनुत्कृष्ट बांधकर, ठीक। सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति के संक्रामक का अंतर काल जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से उपार्ध पुद्गल परिवर्तन मात्र है। अंतर की बात है, उत्कृष्ट स्थिति का संक्रामक कौन होगा, मिथ्यात्व में भी होगा और सम्यक्त्व में भी होगा, वहां उत्कृष्ट स्थिति कितनी लेना, अंत कोड़ा कोई, हाँ उससे ज्यादा नहीं होगा। अंतर है वो जब मिथ्यात्व में चला जाता है और मिथ्यात्व में जाने के बाद वो तो अंतर्मूर्त घटित होगा। वहां अंतर्मूर्त कैसे घटित हुआ, वहां भी संक्रमण तो चल रहा है सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का, मिथ्यात्व में जाने पर उसका अंतर कैसा घटित हुआ, हाँ उत्कृष्ट स्थिति का संक्रामक, अकेला संक्रामक नहीं, उत्कृष्ट स्थिति अंत कोड़ाकोड़ी होगी ना, प्रमाण में लिया नहीं उसको, प्रमाण अनुगम में देखो उत्कृष्ट स्थिति अपनी अपनी ली है उन्होंने, तो इसकी उत्कृष्ट स्थिति कब घटित होगी, हाँ मिथ्यात्व में से, मगर जब प्रायोगिक लब्धि में आता है तो मिथ्यात्व को ही उसने अंत कोड़ाकोड़ी कर दिया और वो अभी टर्न होकर इसके भी अंत कोड़ाकोड़ी हो जाएगी, उसी को हम उत्कृष्ट स्थिति संक्रमण कहेंगे। तो फिर दोबारा कब होगा उत्कृष्ट स्थिति, ये फिर नया बांधा और फिर वो टर्न हो गया, तब तब उसको जघन्य अंतर्मूर्त हो गया, जघन्य अंतर्मूर्त घटित हुआ और अधिक से अधिक, हाँ मगर उसमें उत्कृष्ट में से भी अनुत्कृष्ट होते होते वो उद्वेल ना होगी जो कुछ है, फिर दोबारा जब होगा, अच्छा उत्कृष्ट 70 कोड़ाकोड़ी वो मिथ्यात्व में से टर्न होके आने उसकी अपेक्षा से ले, हाँ जगन्य है वो पल्लव के असंख्यात विभाग, हाँ क्योंकि उसका वो तो स्थिति संक्रम में लिया, उसको किस में लिया, कौन से टेबल में आए वो जघन्य स्थिति कितनी है उतनी बात है। हाँ जघन्य स्थिति में संक्रामक वो नहीं होगा ना, मिथ्यात्व में जाने पर करेगा, और उसका संक्रामक वैसे उत्कृष्ट। वो जघन्य की बात तो हमने देखी थी, जघन्य की जो हमने देखी थी सम्यक देखी तो क्षपणा करने वाला, और सम्यक मिथ्यात्व का भी क्षपणा करने वाला लिया जघन्य वाला। ये उत्कृष्ट का अंतर देख रहे हम, पांच अंतराय कर्मों की उत्कृष्ट। हाँ स्थिति संक्रमण उसमें से होगा। हाँ या मिथ्यात्व में जाने पर भी उसका संक्रमण तो उस काल में भी चल रहा है उसका। हाँ उत्कृष्ट तो जब वो आता है पहले में पहले तब उसका संक्रमण कहलाएंगे। पांच अंतराय कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति के संक्रामक का अंतरकाल जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से असंख्यात पुद्गल परिवर्तन मात्र है। ये जैसे हमने शेष तीन ज्ञानावरण में देखा था, अकेले मतिशुद्ध ज्ञानावरण में ही वो एक समय घटित हुआ था अंतर, बाकी अन्य तीन ज्ञानावरण में अंतर्मूर्त घटित हुआ था, ऐसे यहां भी लेना देखो। हाँ और उत्कर्ष से असंख्यात पुद्गल परिवर्तन, देवायु और नारकायु की उत्कृष्ट स्थिति के संक्रामक का अंतरकाल जघन्य से अंतर्मूर्त है, उत्कर्ष से वह देवायु का उपार्ध पुद्गल परिवर्तन तथा नरकायु का असंख्यात पुद्गल परिवर्तन मात्र है। यानी अंतर्मूर्त की उसने अन्य आयु ली और फिर आया वापस, ऐसा लेना ना। हाँ जगन्य के लिए उत्कर्ष ले उसके तो उपार्ध पुद्गल परिवर्तन देवायु का लिया, उत्कृष्ट लिया ना। हाँ और नरकायु के लिए असंख्यात पुद्गल परिवर्तन, उत्कृष्ट स्थिति का संक्रामक का अंतरकाल लिया। देखो जो स्थिति अपेक्षा देवायु नरकायु की उत्कृष्ट स्थिति के संक्रामक का अंतरकाल जघन्य से एक समय कम एक पूर्व कोटि और 10,000 वर्ष तथा उत्कर्ष से भी उतना मात्र ही है। यानी ये जब कर रहा है तब उसके सत्ता में कितने निषेक है उसकी बात है। जो स्थिति यानी क्या, देवायु और नरकायु की उत्कृष्ट स्थिति के संक्रामक का अंतरकाल, अंतर की बात है, यानी उत्कृष्ट स्थिति का संक्राम किया और फिर कितना अंतर पड़ा उसमें, एक समय कम एक पूर्व कोटि और 10,000 वर्ष। उत्कर्ष से भी उतना मात्र ही है, जो स्थिति ने उस समय उसके निषेक कितने हैं उसकी बात है। अंतरकाल जघन्य से उत्कृष्ट, देखो आयु का संक्रामक कौन है उत्कृष्ट स्थिति का निकालो, 350 पृष्ठ पर। देवायु और नारकायु का उत्कृष्ट स्थिति संक्रम 33 आग्रोपम, परंतु नरक में तो ये घटित होगा अंतर। अभी 33 सागरोपम वाला जो है देव वाला, वो तो फिर देव में नहीं जाने वाला। हाँ, और फिर बांधी ये घाता। हाँ, पर ऊपर तो घातायुष का होते ही नहीं है। हमने क्या देखा था कि अच्छा, जैसे नरक में हुआ वैसे ये देवायु भी 33 की बांधकर कम हो गई। समय कम पूर्व कोटि और 10,000 वर्ष लिया और उत्कृष्ट से भी उतना ही लिया, जो स्थिति उसकी। उत्कृष्ट स्थिति का संक्रामक का अंतरकाल जघन्य से अंतर्मूल, ये उसी बंधक काल में ही ले लेना क्या, नहीं ले सकते। ऐसे ले सकते हैं ना कि छोटा आवाधा वाला लिया और फिर दूसरा उसका बंद काल आ गया, उस काल में फिर किया, तो ऐसा ले सकते कि नहीं ले सकते? क्या बंधक काल में अंतर्मूर्त छोड़कर फिर उसका उत्कर्षण वगैरह वो ले सकते हैं? जो कुछ है मनुष्यायु का पढ़ते हैं, मनुष्यायु और तिर्यगायु का उत्कृष्ट स्थिति के संक्रामक का अंतरकाल जघन्य से अंतर्मूर्त, मुंह बराबर करना। और उत्कर्ष से असंख्यात पुद्गल परिवर्तन मात्र है, जो स्थिति की अपेक्षा वह जघन्य से एक समय कम पूर्व कोटि प्रमाण है, उत्कृष्ट अंतरकाल भी उसका वही है। देखो, मनुष्यायु तिर्यगायु का उत्कृष्ट से जो हमने देखा था, उत्कृष्ट का स्वामित्व हमने देखा था, तो जगन्य का देखा था। अभी हमने काल की बात देखी थी ना, के इसकी देखी थी, काल की देखी थी कि अंत आयु के, आयु के बारे में अभी हमने देखा था ना। नहीं, अभी हमने जो पढ़ा था, नहीं मैंने 350 का पढ़ा था, उत्कृष्ट स्थिति से हम 33 आग्रोपम लिया था, मनुष्यायु तिर्यगायु का 3 पल्योपम लिया था, और जो स्थिति संक्रम आवलिकम पूर्व कोटि के त्रिभाग से अधिक 3 पल्यों को मिला था, और यहाँ जो उसका अंतर अभी घटित कर रहे हैं, ये लगातार काल लिया वहां पर उसने। नहीं, मगर यहाँ तो उत्कृष्ट से असंख्यात पुद्गल परिवर्तन, वो तो समझ में आता है। उत्कृष्ट स्थिति तभी बांधेगा, 3 पल्ले वाली के लिए है उसमें। हाँ, उत्कृष्ट स्थिति का संक्रामक यानी उत्कृष्ट स्थिति बांधकर उसकी उदीर्ण करने वाला जीव लेना, या उत्कर्षण अपकर्षण जो कुछ है। जघन्य घटित करना है इसलिए अंतर्मूर्त लिया, इसलिए पूर्व कोटि में से फिर वापस आया अंतर्मूर्त वाले में। नहीं, मगर हमने एक अपेक्षा देखी थी ना, तीन पल्ले में भी कदली घात करके फिर दोबारा तीन पल्ले भी लिया था। तो एक समय कम पूर्व कोटि क्यों कहा, जो स्थिति बताई, जो स्थिति कैसे घटित होगा। आप कहते हैं उसका संक्रमण तो बंधने के काल में लेना, अब यहाँ बताते हैं कि उसके जस स्थिति लेना। यानी दोनों बराबर घटित नहीं होता है। और उत्कृष्ट अंतरकाल भी उसका वही है, वही है ने वो एक समय कम पूर्व कोटि लिया। जो कुछ है अब हम नीचे का पढ़ेंगे। उत्कृष्ट स्थिति को बांधने वाला जीव जिन नाम कर्म की प्रकृतियों को बांधता है, उन प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति के संक्रामक का अंतर जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से असंख्यात पुद्गल परिवर्तन मात्र है। यानी दोबारा उतनी उत्कृष्ट स्थिति बांधने का, शेष नाम कर्म प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति के संक्रामक का अंतरकाल जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से असंख्यात पुद्गल परिवर्तन मात्र होता है। आहार शरीर अंगोपांग, आहार शरीर बंधन, आहारक शरीर संघात की उत्कृष्ट स्थिति के संक्रामक का अंतरकाल जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से उपार्ध पुद्गल परिवर्तन मात्र है। ये तो समझ में आते हैं। तीर्थंकर नाम कर्म की उत्कृष्ट स्थिति के संक्रामक का अंतरकाल संभव नहीं है। उच्च और नीच गोत्र की उत्कृष्ट स्थिति के उच्च करना संक्रामक का अंतर जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से असंख्यात पुद्गल परिवर्तन मात्र है। इस प्रकार एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट स्थिति के संक्रामक का अंतर समाप्त हुआ। अब जघन्य स्थिति के संक्रामक के अंतरकाल की प्ररूपना की जाती है। यथा आयु कर्मों को छोड़कर शेष कर्मों की जघन्य स्थिति के संक्रामक का अंतरकाल संभव नहीं है। अब ये आयु में कैसा अंतरकाल घटित होगा, जघन्य स्थिति का संक्रमण कब होता है, मैं अंतर नहीं पूछ रही हूँ, स्वामित्व पूछ रही हूँ। जघन्य संक्रामक कौन है, जघन्य स्थिति का संक्रमण करने वाला। हाँ, किसी भी भव में आवली और एक समय बाकी है। अब अंतर कितना पड़ेगा उसका, ये आवली लेना, ये आवली लेना और जघन्य अंतर घटित करना है, तो आगे वाला छोटा भाव लेना पड़ेगा। हाँ, अंतर्मूर्त क्या, वो अभी लब्धि अपर्याप्त लेगा तो वो भी क्षुद्र भाव ग्रहण भी लेना उसमें। शुद्ध भोग उतना उसमें लेगा। अभी हम पढ़ेंगे, देखो देवायु और नारकायु की जघन्य स्थिति के संक्रामक का अंतरकाल जघन्य से साधिक 10,000 वर्ष और उत्कर्ष से प्रकृति संक्रमण संक्रम के अंतर के समान है। हाँ, यानी देवायु और नरकायु फिर इतनी बांधेगा ही नहीं। एक बार देवायु का जो जघन्य स्थिति संक्रमण किया, फिर असंख्यात पुद्गल परिवर्तन में भटक गया, और फिर जब दोबारा देवायु बांधकर अंतिम समय में आएगा आवली प्लस एक समय, तब उसका उत्कृष्ट काल घटित होगा, अंतर घटित करेंगे हम। तिर्यगायु और मनुष्यायु की जघन्य स्थिति के संक्रामक का अंतर जघन्य से एक समय कम क्षुद्र भव ग्रहण और उत्कर्ष से प्रकृति संक्रामक के अंतर जैसा है। देखो प्रकृति संक्रामक का जरा अंतर निकालना, इसमें अंतर कहाँ है? जगन्य से एक समय उत्कृष्ट है, आयु का अलग नहीं दिया कुछ। जिनका तीन संक्रमण के काल की अपेक्षा उन्होंने तीन भंग है उसका ये बताया। अंतर में कोई उन्होंने बताई नहीं थी, आयु की बात नहीं थी। अब हम आते हैं यहाँ पर 361 अनंतानुबंधी कषायों की जघन्य स्थिति के संक्रामक का अंतरकाल जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से उपार्ध पुद्गल परिवर्तन मात्र है। ये जघन्य स्थिति का संक्रामक कौन होगा अनंतानुबंधी में? हाँ, विसंयोजन वाला। अंतर्मूर्त में फिर वो कर सकता है या फिर दोबारा मैंने वो मिथ्यात्व में जाएगा, फिर बांधेगा, फिर वो सब जघन्य स्थिति संक्रम का स्वामी देखेंगे अनंत अनुबंधी का। हाँ, 353 पृष्ठ पर लिखा है अनंत अनुबंधी का स्वामित्व, दूसरे पैराग्राफ की तीसरी लाइन। अनंत अनुबंधी कषायों के अंतिम स्थिति कांडक के चरम समय में वर्तमान ऐसे अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाले जीव के होता है। अंतर कैसे घटित होगा? मिथ्या तो में जाएगा, हाँ, फिर पहले में पहले अनंतानुबंधी का बंद करेगा, फिर दोबारा समय तो प्राप्त करेगा वगैरह वगैरह। विसंयोजन करेगा। तो जघन्य से अंतर्मूर्त घटित होगा और उत्कर्ष से उपार्ध पुद्गल परिवर्तन मात्र है, यानी उतने काल में वो फिर समय दृष्टि होकर विसंयोजना नहीं करेगा, ऐसा उपार्ध पुद्गल परिवर्तन लिया। शेष प्रकृतियों की अजघन्य स्थिति के संक्रामक का अंतरकाल प्रकृति संक्रामक के अंतर जैसा है। इस प्रकार जघन्य स्थिति संक्रामक के अंतर की प्ररूपण हुआ है, समाप्त हुई। अब नाना जीवों की अपेक्षा भंग विषय दो प्रकार का है, उत्कृष्ट पद विषयक भंग विषय और जघन्य पद विषयक भंग विषय। उत्कृष्ट पद विषय कहने, अभी हमने जो उत्कृष्ट स्थिति के संबंध में नाना जीवों की अपेक्षा जो भंग पड़ेंगे और जघन्य की अपेक्षा, उनमें अर्थपद इस प्रकार है, उसका जो नियम है, उसके जो स्पष्टीकरण बताएंगे। जो उत्कृष्ट स्थिति का संक्रामक होता है वह अनुत्कृष्ट स्थिति का असंक्रामक होता है। जो अनुत्कृष्ट स्थिति का संक्रामक होता है वह उत्कृष्ट स्थिति का असंक्रामक होता है। जिन प्रकृतियों का सत्व है वे यहाँ प्रकृत है, जिनका सत्व नहीं है वे यहाँ अव्यवहार है, यानी उसका तो कोई सवाल ही नहीं होता। इस अर्थपद के अनुसार ज्ञानावरण की उत्कृष्ट स्थिति के कदाचित सब जीव असंक्रामक होते हैं, कदाचित बहुत असंक्रामक और एक संक्रामक होता है, कदाचित बहुत असंक्रामक और बहुत संक्रामक होते हैं। इस प्रकार यहाँ तीन भंग है उत्कृष्ट स्थिति के लिए। लिए क्या क्या लिए? सभी असंक्रामक, बहुत असंक्रामक, एक संक्रामक, और बहुत असंक्रामक और बहुत संक्रामक। ज्ञानावरण की अनुत्कृष्ट स्थिति के कदाचित सब जीव संक्रामक होते हैं। अब यहाँ संक्रामकों को सब में लिया, अनुत्कृष्ट है ना, तो सभी तो हो सकते हैं, सभी वो अनुत्कृष्ट वाले हो। कदाचित बहुत संक्रामक और असंक्रामक होता है। एक चाहिए यहाँ, एक असंक्रामक चाहिए। ऊपर क्या लिखा है? अनुकस्याय ठिदे सिया सव्वे जीवा संकामया, सिया संकामया च असंकमाओच, यानी एक जीव असंक्रामक चाहिए। जैसे ऊपर लिखा था ना पहली लाइन में, बहुत असंक्रामक और एक संक्रामक, वैसे यहाँ क्या लिखा है तीसरी लाइन के अंत में, बहुत संक्रामक और एक असंक्रामक, एक शब्द रह गया। हाँ, और के बाद एक डालना चौथी लाइन में, शुरू में संक्रामक और एक असंक्रामक होता है। कदाचित बहुत संक्रामक और बहुत असंक्रामक भी होते हैं। इस प्रकार नाना जीवों की अपेक्षा जीवों की हुआ है। सब प्रकृतियों के भंग विचय को ज्ञानावरण के समान ही ले जाना चाहिए। जघन्य पदभंग विचय की प्ररूपना उत्कृष्ट पदभंग विचय के समान है। विशेष इतना है कि तिर्यक आयु की जघन्य व अजघन्य स्थिति के संक्रामक नियम से बहुत हैं। कौन सा दूसरा भंग? कौन से जघन्य की बात कर रहे हैं कि आप उत्कृष्ट की बात कर रहे हैं? हाँ, तिर्यंच में जघन्य व अजघन्य के बहुत है। वहां तो एक ही बात नहीं होगी, क्योंकि तिर्यंच की अनंत जो संख्या है, अनंत जीवों की अपेक्षा से लिए, इसलिए बहुत लिए। किसमें? हाँ हाँ, ये हाँ उसका रेफरेंस है कि नहीं पूछ रहे हैं। देखो ऊपर जो असंक्रा अनुत्कृष्ट की बात है ना, सेकंड लाइन में पढ़ेंगे, अनुकस्याय ठिदिये सिया सव्वे जीवा संकामया, यानी सभी जीव संक्रामक होते हैं। सिया संकामया च असंकमाओ च, यानी वो एक वचन डाला है, ओ डाला ना। देखिए पहली लाइन देखना, पहले लाइन का पहला शब्द क्या लिखा है? सिया असंकामया, ये अनेक वचन, च संकामओ च, ओ डाला ना, वो एक वचन हुआ। वैसे यहाँ असंकामओ, यानी एक असंक्रामक है, ऐसा उसमें से अर्थ निकलता है। उसका वो तो उसका रूप ही बदल जाता है ना, उसमें जो विभक्तियां वगैरह लगती है उसकी। ये जघन्य की भी बात हमने पढ़ी। नाना जीवों की अपेक्षा काल की प्ररूपणा की जाती है, यथा सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व और नारकायु की जो स्थिति के संक्रामक है, इस कारण उनकी उत्कृष्ट स्थिति का संक्रम काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से आवली के असंख्यात वे भाग मात्र हैं। नाना जीवों की अपेक्षा से बता रहे हैं, जो स्थिति के संक्रामक है इस कारण उनकी उत्कृष्ट स्थिति का संक्रमण काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से आवली के असंख्यात वे भाग मात्र हैं। यानी लगातार उसमें उत्पन्न होने वाले जीव लेना आवली के असंख्यात वे भाग काल तक। मनुष्यायु तिर्यगायु देव जो स्थिति के संक्रामक है जो स्थिति ने उसकी जो सत्ता में पड़ी है, सत्ता में पड़ी वो नाना जीवों की अपेक्षा, ये इनके तो जो स्थिति के संक्रामक होते हैं। मनुष्यायु तिर्यगायु देवायु आहारक शरीर, आहारक शरीर अंगोपांग, आहारक बंधन, आहारक संघात और तीर्थंकर, इनकी उत्कृष्ट स्थिति का संक्रम काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से संख्यात समय मात्र है। यानी लगातार जो होने वाले जीव लगातार संख्यात ही हो गए, आहारक वाले हो या तीर्थंकर वाले हो, इसको लिया। शेष कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति का संक्रम काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से पल्योपम के असंख्यात वे भाग मात्र हैं। सभी कर्मों का अनुत्कृष्ट स्थिति का संक्रम काल सर्व काल है। ये उत्कृष्ट में ही अंतर पड़ता है बीच में, और लगातार का जो काल है, हाँ सांतर वाले भी लिए। नाना जीवन की अपेक्षा जघन्य स्थिति के संक्रम काल की प्ररूपणा की जाती है। अभी जघन्य स्थिति का संक्रम काल ले लिया। यथा नारकायु मनुष्यायु देवायु और अनंतानुबंधी कषायों की जघन्य स्थिति का संक्रम काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से आवली के असंख्यात वे भाग मात्र हैं। तिर्यगायु की जघन्य स्थिति के संक्रामकों का कितना काल है? सर्व काल है। यानी देवायु वगैरह वो मरने वालों की, जो लगातार हर समय मरने वाले की बात है, वहां बीच में अंतर पड़ेगा ना, जन्मने वाले में भी मरने वाले, तिर्यंचों में तो हर समय चलेगा। परभविक की अपेक्षा वह आवली के असंख्यात वे भाग मात्र है। अच्छा अन्य भवों में से, जैसे अभी ये हमने देखा ना, नरक मनुष्य देव में से मरकर आने वाले की अपेक्षा से, हाँ लगातार उसमें से आवेंगे तो, यानी उसमें मरेंगे और तिर्यंच में जाएंगे तो, तिर्यंच में से तिर्यंच में जाने वाले संक्रामक तो हमेशा रहेंगे ऐसे। शेष कर्मों की जघन्य स्थिति के संक्रामकों का कितना काल है? यह आयु के बिना अन्य लिए है, वह जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से संख्यात समय मात्र है। ये जघन्य स्थिति के संक्रामक जो है, जैसे ज्ञानावरण की जघन्य स्थिति का संक्रामक कौन है? हाँ बारहवें के, तो होगा तो एक होगा और फिर लगा एक समय में होगा या लगातार संख्यात समयों तक होगा, पर संख्यात समयों के लिए होगा। सभी कर्मों की अजघन्य स्थिति के संक्रामकों का काल कितना है? सर्वकाल है। इस प्रकार हो गया ये, नाना जीवों की अपेक्षा काल की प्ररूपना समाप्त हुई है। ये अंतर की बात हम कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो। प्रेरणा बे।